أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد प्यारे दोस्तों और इस कार्यक्रम के हमारे सभी प्रिय दर्शकों आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। हमने अपने पिछले कार्यक्रम से रोज़े के तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में बातचीत को आरंभ किया था और इसी बातचीत को हम आगे भी आपके सामने बयान करेंगे। यानी हमारे आज के कार्यक्रम का भी शीर्षक वही मुबतलाते रोज़ा या रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें होंगी। हमने इससे पहले के कार्यक्रम में खाने पीने और इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जो बातचीत थी वो आपके सामने बयान की। अब आज उसी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में से एक और चीज़ जो हमारे रोज़े को तोड़ देती है अगर रोज़े की स्थिति में उसको किया जाए वो ये है कि इंसान अल्लाह, पैगंबर, मासूमीन, इमाम वगैरह पर झूठा बोहतान बांधे, उनके ऊपर झूठ मढ़े। अगर इंसान रोज़े की स्थिति में ईश्वर, पैगंबर और इमामों पर झूठा बोहतान बांधता है तो ये बोहतान बांधना उसके रोज़े के टूट जाने का कारण बनेगा, उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये काम जानबूझ के किया जाए। और इसी में एहतियात वाजिब ये है कि अगर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दूसरे नबियों के ऊपर भी झूठा बोहतान बांधा जा रहा है तो उससे भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, ये झूठा बोहतान जो हो रहा है, जो झूठ बढ़ा जा रहा है, किस प्रकार का हो? वो झूठ किसी भी प्रकार का हो, चाहे लिख कर झूठ बोला जाए, चाहे बोल कर झूठ बोला जाए, चाहे इशारे से झूठ बोला जाए, चाहे कोई काम ऐसा किया जाए जिससे लगे कि पैगंबर या अल्लाह या इमामों के ऊपर झूठ मढ़ा जा रहा है। कोई भी सूरत हो जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि पैगंबर, खुदा, मासूमीन के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, झूठ मढ़ा जा रहा है, तो उससे उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब उसमें चाहे ये साफ साफ कहे, मतलब खुला कहे कि मसलन पैगंबर ने ये फरमाया, अगर ना फरमाया हो तब भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। चाहे इशारे और किनाए में ये बात कहे तब भी उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। वो झूठ जो बोला जा रहा है उसने खुद बनाया हो, अपनी तरफ से झूठ गढ़ा हो, या किसी दूसरे ने झूठ गढ़ा था, ये बोल रहा है वो झूठ, तब भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। चाहे उसने झूठ शुरू करके बयान कर दिया हो, चाहे किसी इंसान ने उससे प्रश्न किया हो और उसके बदले में उसने उसका झूठा जवाब दिया हो। मसलन कोई इंसान किसी व्यक्ति के पास आता है, वो आने के बाद ये पूछे क्या पैगंबर ने ये फरमाया था, और अगर उसने वहाँ पर जवाब हाँ होना चाहिए जानबूझ के ना कह दे, या ना होना चाहिए जानबूझ के हाँ कह दे, तो उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। या कोई अगर प्रश्न पूछे क्या ये जुमला कुरान के अंदर है, उसको पता था मसलन ये कुरान के अंदर नहीं था, फिर भी उसने जानबूझ के कह दिया हाँ, या था उसने जानबूझ के कह दिया नहीं, तो इससे भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि झूठ जो है वो खुद बोल रहा हो रोज़ा बातिल करेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे के झूठ को बयान कर रहा हो तो ये चीज़ अगर दूसरे के कथन को बयान किया जाए तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। एक मिसाल तो इस बात स्पष्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे अगर कोई ये कहे कि यजीद ने ये कहा था कि इस्लाम तो बनी हाशिम का खेल था, ना कोई वही आई ना कोई कुरान नाजिल हुआ, अगर इस प्रकार कहे कि नहीं यजीद का कथन ये था, इस प्रकार अगर बात कहता है तो भले ही ये झूठ था, यजीद का झूठ था, लेकिन बयान इसने किया, इससे इसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक मसला और, अगर कोई इंसान झूठ पहले झूठ मढ़े अल्लाह पर या पैगंबर पर या मासूमीन पर झूठ मढ़े, और झूठ मढ़ने के तुरंत बाद ये कह दे मैंने झूठ बोला था, ये बात सही नहीं थी, तब भी उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। यानी एहतियात ये कि उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, यानी अगर झूठ बोलने के बाद तुरंत ये कह दे कि उसने झूठ बोला था तब भी उसका रोज़ा एहतियातन बातिल है। तो ये वो चीज़ थी जो हमने आपके सामने बयान की, जब इंसान झूठ मार रहा है पैगंबर पर, नबी पर या मासूमीन पर, उसके बाद की जो चीज़ है जो हमारे रोज़े को बातिल कर देती है और रोज़े की स्थिति में उसको नहीं करना चाहिए, वो ये है कि इंसान रोज़े की स्थिति में अपने सर को पानी में डिबो दे। तो हमने जैसा कि हम आपके सामने बयान करते हुए थे, जिस समय हम संक्षिप्त रूप से क्रम अनुसार एक के बाद एक बयान कर रहे हैं कि शर्त यह है कि सर को डुबोया जाए पानी के अंदर। सर के अतिरिक्त किसी और शरीर को डुबोया, शरीर के किसी और हिस्से को डुबोया जा रहा है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। जैसे हमने मिसाल दी थी, अगर इंसान किसी स्विमिंग पूल में या तालाब वगैरह में जाके सर के अतिरिक्त पूरा डूब के जाए तो उससे उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, या सर थोड़ा सा डुबोए तो उससे उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसमें शर्त यह है कि पूरे सर को डुबाए और जानबूझ के डुबोए, तब उसका रोज़ा बातिल होगा। लेकिन यहाँ पर वो हमारे दर्शक जो आयतुल्ला सीसानी की तकलीद करते हैं, उनके बारे में उनको बहुत छूट यहाँ पर हासिल है। आयतुल्ला सीसानी का फतवा ये है कि वो कहते हैं चाहे सर डुबोया जाए, पूरा का पूरा सर डुबो दिया जाए, तब भी वो रोज़े को बातिल नहीं करता है। यानी सर डुबोना, पानी में सर डुबोना रोज़े के बातिल होने का कारण नहीं बनता है। ये फतवा है आयतुल्ला सिस्तानी का। लेकिन आयतुल्ला खामनई यहाँ पर कहते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि अगर इंसान सर को डुबो देता है पानी के अंदर, पूरा सर डुबो देता है, तो उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। यानी इनके यहाँ एहतियात वाजिब के अनुसार रोज़ा बातिल होता है, लेकिन आयतुल्ला सिस्तानी के यहाँ असलन सर डुबोने से रोज़ा बातिल नहीं होता है। तो कुछ जब हमने आपके सामने ये बयान कर दिया कि सर डुबोने से रोज़ा बातिल होता है, तो कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जब रोज़ा बातिल नहीं होगा। जैसे कि हमने बताया था कि जानबूझ के सर डुबोए, अगर कोई इंसान भूले से सर डुबो देता है, वो भूल जाए कि मसलन रोज़ा था, तो अगर भूले से रोज़े को भूल कर सर को पानी में डुबो देता है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। या इस प्रकार डुबोए, आधा सर एक मरते डुबोए, आधा सर दूसरी मरते डुबोए, तो उससे भी रोज़ा बातिल नहीं होगा, क्योंकि शर्त यह है कि जिस समय डुबो रहा है जानबूझ के डुबोए और एक साथ पूरा सर पानी के अंदर डुबोए। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके सर डुबो रहा है पानी के अंदर, तो उससे भी रोज़ा बातिल नहीं होगा। या ये हो जाए मसलन तालाब के किनारे खड़ा था, नहर के किनारे खड़ा था, या स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा था, अचानक गिर जाए उसके अंदर, तो भले ही उसका सर उसके अंदर डूब जाए, उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। या दूसरा व्यक्ति ज़बरदस्ती उसका सर पानी के अंदर डुबो दे, तो उससे भी रोज़ा बातिल नहीं होगा। या अगर पानी के अंदर है, उसका उसको शक हो इस बात का कि पता नहीं मेरा सर पूरा पानी के अंदर गया था या नहीं गया था, तब भी उसका रोज़ा बातिल नहीं है। उसके बाद एक मसला आपके सामने इसी मैंने बयान कर दूं कि अगर इंसान रमज़ान के महीने में गुस्ल की नियत से अपने सर को, पूरे पूरे सर को पानी के अंदर डिबो दे, मतलब स्विमिंग पूल में गुस्ल करने के लिए जाए, अपने पूरे सर को पानी के अंदर डिबो दे, तो क्या होगा, कैसे रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर रमज़ान में इंसान जानबूझ के गुस्ल की नियत से अपने सर को पूरा का पूरा डुबो दे, तो उसका रोज़ा भी बातिल है और ये गुस्ल भी बातिल है। मगर ये कि जिस समय पानी के अंदर था उसी समय तौबा करे, और तौबा करने के बाद जिस समय वो बाहर निकल रहा उसी समय दोबारा गुस्ल की नियत करे। तो अगर ऐसा करता है तो जब बाहर निकल के उसका गुस्ल तो सही होगा, लेकिन रोज़ा फिर भी उसका बातिल होगा। तो ये वो चीज़ थी जो सर को पानी में डिबोने से संबंधित मसले थे जो हमने आपके सामने बयान किए कि आयतुल्ला सिस्तानी के यहाँ असलन किसी भी सूरत में रोज़ा बातिल नहीं होता है। उसके अलावा दूसरे जो हमारे मुज्तहिदीन थे उसके बारे में हमने आपके सामने बयान किया। उसके बाद की चीज़ जो हमारे रोज़े को बातिल कर सकती है और इंसान को रोज़े की स्थिति में उसको नहीं करना चाहिए, वो है क़य करना या उल्टी करना। अगर इंसान रोज़े की स्थिति में जानबूझ के उल्टी करता है तो वो रोज़ा उसका बातिल हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। चाहे ये उल्टी किसी बीमारी के कारण हो, वो मजबूर हो जाए, वो विवश हो जाए इस बात के ऊपर कि उसको उल्टी करना पड़े, तो बीमारी या विवशता के कारण भी अगर इंसान उल्टी कर रहा है तो उससे उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर भूले से उल्टी हो जाए या कंट्रोल ना रह जाए इंसान के ऊपर, अचानक उल्टी हो जाए, तो इससे उसका रोज़ा बातिल नहीं होता है। तो ये उल्टी से संबंधित मसले थे जो हमने आपके सामने बयान किए। उसके बाद जो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में से है वो है हस्त मैथुन, या जिसको हम इस्तिमना भी कहते हैं। हस्त मैथुन का अर्थ ये है कि इंसान अपनी पत्नी से संभोग के अतिरिक्त किसी ऐसे अपने हाथ से, किसी और दूसरी चीज़ से, या किसी और कारण से अपना वीर्य पतन करे। यानी इंसान अपने हाथ से या दूसरे किसी चीज़ से अपनी मनी को अगर निकाल देता है तो इसे हस्त मैथुन कहा जाएगा और इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। और अगर रोज़ेदार ऐसा करता है तो उससे उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बिना कंट्रोल के मनी निकल जाए, इंसान सो रहा था, स्वप्नदोष हुआ, उसका वीर का पतन हो गया, तो इससे उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, उसका रोज़ा सही है। इसमें जब मैंने हमने आपके सामने ये बात बयान की कि इंसान का सोते में उसका वीर पतन हो जाए, तो अगर कभी ऐसा हो कि इंसान को सोने से पहले ये पता था कि अगर हम सोएंगे तो मुजनिब हो जाएंगे, वीर पतन हो जाएगा, तो क्या वो रमज़ान में दिन में सो सकता है या नहीं सो सकता है, यानी रोज़े की स्थिति में सो सकता है कि नहीं सो सकता है। तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर इंसान को इस बात का पता था कि अगर सो जाएगा तो मुजनिब हो जाएगा, फिर भी सोने में कोई हर्ज नहीं, सो सकता है, और अगर सो गया है सोने के बाद उसका वीर पतन हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, तो भी उसका रोज़ा सही होगा, उसका रोज़ा बातिल नहीं है। उसके बाद जब सो रहा है इंसान, वीर पतन हो गया, अब अगर इंसान का वीर पतन हो रहा था और उसी समय उसकी आँख खुल जाए, जग जाए, तो अब उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि वो अपने मनी निकलने से, वीर निकलने से अपने आप को रोके, उसके ऊपर ऐसा करना वाजिब नहीं है। तो ये वो चीज़ थी जो वीर पतन और स्तिमना से संबंधित या हस्तमैथुन से संबंधित चीज़ थी जो हमने आपके सामने बयान की। ये वो चीज़ है जो हमारे रोज़े को तोड़ देती है, अगर इंसान जानबूझकर ऐसा करता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसमें एक मसला आपके सामने और बयान कर दूँ और यहाँ पर इस बात को ख़त्म कर देंगे हम, वो ये है कि अगर किसी इंसान को रमज़ान के महीने में दिन के समय अपनी पत्नी से छेड़छाड़ कर रहा था बिना वीर पतन की नीयत के, यानी ऐसा कोई इरादा नहीं था उसका, अपनी पत्नी से छेड़छाड़ कर रहा था, तो अगर उसको इस बात का इत्मीनान है कि इस छेड़छाड़ से उसका वीर पतन नहीं होगा, वीर नहीं निकलेगी, और अगर अचानक निकल जाती तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन अगर उसको इत्मीनान नहीं था इस बात का कि हो सकता है, उसको शायद संभावना रही हो कि वीर पतन हो सकता है, और अगर वीर पतन हो जाए तो उससे उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो ये मसले थे हमारे हस्तमैथुन से संबंधित जो हमने आपके सामने अभी बयान किए। तो ये वो चीज़ें थीं जो हमारे रोज़े को बातिल कर सकती हैं। उसके बाद जो और चीज़ हमारे रोज़े को बातिल कर सकती है, वो है कि इंसान सुबह की अज़ान के समय तक हालत जनाबत में, जनाबत की स्थिति में बाकी रह जाए। अगर सुबह की अज़ान तक जनाबत की स्थिति में बाकी रह जाता है, तो अगर वो रमज़ान का महीना था, रमज़ान का रोज़ा था, तो उसका रोज़ा बातिल होगा, या रमज़ान के क़ज़ा रोज़ा था, क़ज़ा रोज़ा रखने थे और सुबह की अज़ान तक जानबूझ के उसने गुस्ल नहीं किया, या अगर उसका अदाए तयम्मुम था, तयम्मुम नहीं किया, तो उसके क़ज़ा भी रोज़ा उस दिन का बातिल होगा, उस दिन रोज़ा नहीं रख सकता है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरे रोज़े हैं तो वो रोज़े बातिल नहीं होंगे, अगर वो दिन में भी उसके लिए गुस्ल या अगर उसका अदाए तयम्मुम हो तो तयम्मुम कर सकता है। अब उसके बाद एक मसला आता है, अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में मुजनिब हो जाए, उसके बाद एक दिन बाद या कई दिन बाद उसको इस बात उसको याद आया कि मैं मुजनिब हुआ था, तो अब क्या करे, उसके रोज़े का क्या होगा? तो अगर उसको कई दिन बाद याद आता है तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी यह है कि जो रोज़े छूट गए हैं, यानी जो रोज़े उसने जनाबत की स्थिति में रख लिए हैं, उसको वाजिब उसके ऊपर यह है कि उन रोज़ों की क़ज़ा करे, यानी अभी जो रख रहा है वो तो बातिल है ही, जो पीछे इस स्थिति में रख चुका है उनकी भी क़ज़ा करना उसके ऊपर वाजिब है। अब अगर इसके बाद एक मसला ये भी पेश आता है कि अगर इंसान रमज़ान के दिनों में दिन में सो रहा था, अब दिन में सोते समय जब वो सो रहा था उसका वीर पतन हो गया, तो क्या उठते ही तुरंत उसके ऊपर गुस्ल जनाबत करना वाजिब है या नहीं? तो हमारे फुकहा यहाँ पर कहते हैं तुरंत गुस्ल जनाबत करना वाजिब नहीं है, बल्कि वो अपने गुस्ल जनाबत को नमाज के समय तक टाल सकता है, जिस समय नमाज़ पढ़ना हो उस समय गुस्ल जनाबत, या अगर उसका दायित्व तयम्मुम करना है तो तयम्मुम कर सकता है। तो ये गुस्ल जनाबत से संबंधित भी, अगर कोई स्त्री, कोई महिला मासिक धर्म यानी हैज़ या निफास की स्थिति में जानबूझकर अजान सुबह तक बाकी रह जाए और वो गुस्ल न करे, और या उसका अगर दायित्व तयम्मुम था तयम्मुम न करे, तो वो भी उसके रोज़े को बातिल कर सकता है। यानी आवश्यक अगर कोई स्त्री रमज़ान के महीने में सुबह की अज़ान से पहले मासिक धर्म से पवित्र हो जाती है, तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि अज़ान से पहले पहले अगर गुस्ल करना है उसका वाजिब, तो गुस्ल करे, अगर तयम्मुम दायित्व है तो तयम्मुम करे, अगर नहीं करती है तो उसका रोज़ा बातिल होगा। तो ये वो चीज़ थी कि जो हमारे रोज़े को बातिल कर सकती थी, यानी अगर सुबह की अज़ान तक इंसान जनाबत या महिला हैज़ या निफास की स्थिति में बाकी रहती है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसी प्रकार इस्तेहाज़ा के बारे में भी है कि जो उसकी विशेष परिस्थितियाँ उनके अनुसार अगर वो अपना दायित्व अंजाम नहीं देती तो भी उसका रोज़ा बातिल होगा, उसके लिए आप तौज़ुल मसाइल जैसी किताबों को देख सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमारे रोज़े को बातिल कर सकती है वो अनीमा लेना। हर वो चीज़ जो बह रही हो, बहने वाली चीज़ से अगर नीमा लिया जाता है तो वो उससे रोज़े को बातिल कर देगा, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे डॉक्टरी के कारण हो, किसी भी कारण हो, अगर वो चीज़ बहने वाली है तो उसके रोज़े को बातिल कर देगी। तो ये वो तमाम चीज़ें थीं जो हमारे रोज़े को बातिल कर देती हैं, जो अगर इनको अंजाम दिया है तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। उसके बाद एक बात आपको फिर बता दूं कि हर वो चीज़ जो हमारे रोज़े को बातिल करती है वो उसी स्थिति में बातिल करती है जब इन चीज़ों को जानबूझ के अंजाम दिया जाए। अगर भूले से अंजाम दिया जा रहा है तो ये हमारे रोज़े को बातिल नहीं करेगी। सिर्फ़ एक चीज़ है जो भूले से भी अगर छोड़ दी जाए तो वो हमारे रोज़े को बातिल कर सकती है, वो है अगर रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा रखना है और भूले से वो जनाबत की हालत में सुबह की अज़ान तक बाकी रह जाए तो ये हमारे उस रोज़े को तोड़ देगी। उसके अतिरिक्त तमाम जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं उनको अगर जानबूझ के किया जाए तभी रोज़े को बातिल करती हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो अगर रमज़ान में इंसान कर रहा है रोज़े को बातिल कर देगा, और ये हराम है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़े में नहीं करना चाहिए, मकरूह हैं। सबसे पहली चीज़ जो मकरूह है रोज़े में इंसान को नहीं करना चाहिए वो ये है कि हर वो काम, हर वो कार्य जो इंसान के शरीर में कमज़ोरी लाए उसको करना मकरूह है। जैसे खून का निकलवाना, हजामत करवाना, इस प्रकार के कार्य रोज़े की स्थिति में मकरूह हैं। खुशबूदार घास वगैरह को सूंघना मकरूह है, लेकिन इत्र लगाना मकरूह नहीं है। इत्र लगा सकता है लेकिन खुशबूदार घास वगैरह का सूंघना मकरूह है। जो कपड़े उसने पहन रखे हैं उनको भिगोना मकरूह है। गीली लकड़ी से मिसवाक करना मकरूह है। रोज़े की स्थिति में दांतों का निकलवाना या हर वो काम करना जिससे मुंह के अंदर खून आए मकरूह है। महिला का पानी के अंदर बैठना रोज़े की स्थिति में मकरूह है। इस प्रकार की और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो मकरूह हों, उसके लिए हमें बड़ी किताबें या तौज़ुल मसाइल जैसी पुस्तकों को देखना होगा। हम अपने मुब्तलात रोज़ा के अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद भी हम आपके सामने और कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को अल्लाह की पनाह में छोड़ता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।